राघव ने आखिरकार सलीना को पकड़ ही लिया था। सलीना की पूरी कोशिश थी कि वो आशिका के राज के सहारे उनके चंगुल से निकल जाए, लेकिन राघव रचित और अभिमान के आगे उसकी कोई भी चाल कामयाब नहीं हो पाई। उन तीनों को उसे ज्यादा ब्लैकमेल भी नहीं करना पड़ा और सलीना ने अपना मुंह खोल दिया था। उसने आशिका के स्काई के जाल में फंसने से लेकर उसे स्काई के पास भेजने तक की सारी कहानी सुना दी थी। उसकी कहानी के काफी हिस्सों से अभिमान पहले से ही वाकिफ था, लेकिन अगर कोई चौंकाने वाली बात थी तो वो ये थी कि आशी भी इस प्लान में शामिल थी। साथ ही उनके सामने आशी की तृप्ति की बेटी होने का सच सामने आया। आशी पहले से ही आशिका का सच जानती थी और उसकी पूरी कोशिश थी कि आशिका का सच उसके परिवार के सामने ना आए। पूरा सच सुनने के बाद अभिमान के चेहरे पर गहरे गुस्से के भाव थे और ये सब सुनकर उसे एक झटका सा लगा। अभिमान तेज कदमों से चलकर सलीना के सामने आया। उसकी आंखों में आंखें डालकर अभिमान ने सख्त आवाज में पूछा, तुम झूठ नहीं बोल रही हो ना? अगर कोई और ही बात बाद में सामने आई तो आई स्वेर अपने हाथों से तुम्हारी जान लूंगा। तुम्हें लगता है कि मेरी कंडीशन झूठ बोलने की है? सलीना ने बिना पलके झपकाए कहा। मुझे भी सब सुनने के बाद तुम्हारी ही तरह अजीब लगा था और मैं आशिका को अवेयर भी करना चाहती थी। मैं उसे पूरी बात नहीं बता सकती थी क्योंकि मॉम को पता चलता तो वो सच में मुझे मार डालती। ऊपर से पैसे और ये सारा नुकसान मैंने किया था। सलीना की बात पर सहमति जताते हुए राघव बोला, मुझे नहीं लगता ये झूठ बोल रही है। अभिमान ने हल्के से सिर हिला दिया था। वो एक एक घटना को याद कर रहा था, उसकी शादी के बाद अगले दिन किस तरह आशी सिंघानिया फैमिली के साथ वहां पहुंच गई थी और तृप्ति का भी उन्हीं के साथ आना अब उसे किसी तरह का इत्तेफाक नहीं लग रहा था। मैंने पहले इस तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया? अभिमान ने खुद से बड़बड़ाकर कहा। अभिमान को खामोश और खोया हुआ देखकर रचित ने पूछा, आगे क्या करने का सोचा है? मुझे लगता है कि मुझे मिस्टर सिंघानिया से बात करनी चाहिए। अब वो आशी से डायरेक्ट पूछेंगे तभी वो अपने मुंह से सच बताएगी। वो लड़की इतने सालों से उनकी आंखों के सामने धोखा दे रही है, वो उस फैमिली में रहना डिजर्व भी नहीं करती है। अभिमान तांत भींचते हुए बोला और उसने आशुतोष को कॉल करने के लिए तुरंत अपना मोबाइल निकाल लिया था। इससे पहले कि अभिमान आशुतोष को कॉल करता, सलीना हंस पड़ी थी। अभिमान का ध्यान उसकी तरफ चला गया। सलीना ने व्यंग्य भरे लहजे में कहा, वो लड़की इतने सालों से सिंघानिया फैमिली में है और कोई उसे पकड़ नहीं पाया, तो इतनी आसानी से वो अपना सच एक्सेप्ट नहीं करने वाली है। पूरे प्लान के साथ उसे आशिका की जगह दी गई थी और जहां तक मैं मॉम को जानती हूं, उन्होंने पूरे सबूत मिटा दिए होंगे। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है, गलती से भी उसके ऊपर एक आंच तक नहीं आने देगी। अनफॉर्चुनेटली एक बार फिर मुझे इसकी बात से अग्री करना पड़ रहा है, राघव ने गहरी सांस लेकर कहा। अभी सही वक्त नहीं है और ना ही हमारे पास पूरे सबूत हैं। ठीक है, मिस्टर सिंघानिया के साथ तुम्हारा रिश्ता थोड़ा बेहतर हो गया है तो तुम्हारे कहने पर वो एक बार के लिए तुम्हारी बात पर यकीन कर लेंगे, लेकिन आशी कभी अपने मुँह से सच एक्सेप्ट नहीं करेगी। हमें उसके खिलाफ पूरे सबूत चाहिए होंगे और मुझे वो लड़की हमेशा से खतरनाक लगती है। हो सकता है कि हमारी बात बताने के बाद वो अलर्ट हो जाए और मिस्टर और मिसेस सिंघानिया को भी खतरा हो सकता है। मैंने देखा है कि वो दोनों उसे बहुत प्यार करते हैं। आशिका तुम्हारी वाइफ थी तब सच सामने आ गया, तुम दोनों की शादी भी हो गई, लेकिन फिर भी आशी के कहने पर वो तुम्हें और आशिका को अलग करने की जिद पर अड़े हुए थे। रचित ने भी अभिमान को यही समझाया कि फिलहाल उसे जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। उसे पकड़ना आसान नहीं होगा, इतने सालों से वो झूठ बोल रही है, अभिमान ने निराशा भरे स्वर में कहा। इतना बड़ा सच सामने आ जाने के बावजूद वो कुछ नहीं कर पा रहा था, इस वजह से उसे गुस्सा आ रहा था। सलीना अब राघव के गन पॉइंट पर नहीं थी। वो कुर्सी से खड़ी हुई और अभिमान के सामने जाकर खड़ी हो गई थी। उसे पकड़ने का एक ही तरीका है, मॉम गायब है तो वो भी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रही होगी। किसी तरह उसे मॉम तक पहुंचा दो। वो दोनों मिलती है तब मॉम का एक अलग ही रूप सामने आता है। वो उसे लेकर बहुत इमोशनल है, मुझे पहले नहीं पता था वरना मैं उनकी बातें रिकॉर्ड कर चुकी होती, सलीना बोली। अभिमान ने उसकी तरफ घूर कर देखा और कहा, तुम उनकी बातें कभी रिकॉर्ड नहीं करने वाली थी। आखिर आशिका का सच सामने आने में तुम्हारा भी तो नुकसान था, अब ये अच्छा बनने का दिखावा मत करो। ठीक है, तुमने इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है, पर इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं तुम्हें जाने दूंगा। लेकिन मैंने तुम्हारी हेल्प की है, सलीना ने झट से कहा। उसे यही लगा था कि आशिका का सच बताने के बाद वो लोग उसे वहां से जाने देंगे। उसका जवाब सुनकर राघव उसके पास आया और सलीना की बाजू पकड़ते हुए बोला, और आगे भी करने वाली हो। राघव के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी और वो अभिमान के इशारे पर उसे वहां से ले जाने लगा। सलीना अपने बचाव में चिल्ला रही थी, प्लीज मुझे जाने दो, मैंने तुम लोगों की हेल्प की है, तुमने प्रॉमिस किया था तुम मुझे कुछ नहीं करोगे, सलीना तेज आवाज में बोली। हमने तुम्हें ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं किया था, और दूसरी बात, हम तुम्हारी जान नहीं ले रहे हैं, उल्टा तुम हमारे साथ सेफ रहोगी। तुम्हें क्या लगता है, तृप्ति बजाज का इतना बड़ा राज बताने के बाद वो तुम्हें जाने देगी? तृप्ति को छोड़ो, आशी को पता चला वो अपने हाथों से तुम्हारी जान ले लेगी,
राघव ने ठंडे लहजे में कहा। राघव की बात में सच्चाई थी। सलीना ने अब अपने हाथ पैर मारने बंद कर दिए थे और वो चुपचाप राघव के साथ जाने लगी। उनके वहां से निकलते ही अभिमान्य रचित से परेशान स्वर में कहा, मुझे एक बार आशी से मिलना है। बेशक मिलो, लेकिन अपने बिहेवियर और जुबान पर कंट्रोल रखना। गलती से भी आशी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम सच जानते हैं, रचित ने जवाब दिया। अभिमान ने हल्के से उसकी बात पर सिर हिला दिया था और फिर ऊपर अपने अपार्टमेंट में चला गया था। रात काफी हो गई थी, फिर भी उसने मिस्टर सिंघानिया को कॉल किया। उसकी उम्मीद के मुताबिक मिस्टर सिंघानिया अभी भी जाग रहे थे। अभिमान का कॉल देखकर आशुतोष के होठों पर हल्की सी तंज भरी मुस्कुराहट उभर आई थी। वो कॉल रिसीव करके बोले, कोई मेरे देर रात कॉल करने पर परेशान हो जाता है? हाँ, क्योंकि जब भी आप कॉल करते हो तब मैं सो रहा होता हूँ, पर मुझे पता था कि आप जाग रहे हैं, अभिमान ने जवाब दिया। क्या बात है, परेशान लग रहे हो? यज्ञ ने बताया ना, आशिका बिल्कुल ठीक है और काम के चलते वहां रुकी हुई है। जब काम खत्म हो जाएगा वो आ जाएगी, तुम्हें अब रिलैक्स करना चाहिए, आशुतोष ने उसे समझाया। अभिमान की आवाज के पीछे छुपी फिक्र को उन्होंने तुरंत पहचान लिया था। कोशिश तो यही है, मैं बस यही चाहता हूँ कि जब वो वापस लौटे तो उसे फिर से उन्हीं सब बातों और लोगों का सामना ना करना पड़े जो उसने पहले किया था, अभिमान ने मायूसी के साथ कहा। तब तो मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा, बताओ मुझे क्या करना है, आशुतोष ने तुरंत पूछा। ज्यादा कुछ नहीं, मुझे डिनर पर इनवाइट कीजिए, कल मैं आपके साथ एक फैमिली डिनर करना चाहता हूँ और आशी वहां होनी चाहिए, अभिमान बोला। तुम और आशी के साथ डिनर करना चाहते हो? पता है ना तुम्हारी शादी किससे हुई है, आशुतोष ने हल्के लहजे में कहा। पता है, तभी बोल रहा हूँ, तो कल डिनर पर मिलते हैं, अभिमान ने इतना ही कहा और कॉल कट कर दिया था। वो नहीं चाहता था कि आशुतोष उससे ज्यादा सवाल पूछे। अभिमान आराम से सोफे पर लीन हो गया था। उसने मन ही मन कहा, मिस्टर सिंघानिया को लगता है कि आशिका के लौटने पर आशी को सारा सच बताएंगे, लेकिन अफसोस वो तो हमसे पहले ही सब कुछ जानती है। फिलहाल मुझे कुछ नहीं करना, बस आशी के मूव्स को नोटिस करना है। क्या तृप्ति के अलावा भी कोई और इसका साथ देने वाला है?
अभिमान आंखें बंद करके लेट गया था और कुछ ही देर में उसे नींद आ गई थी। वहीं दूसरी तरफ रात के 1 बजे के करीब रेहान और आशिका एजेंसी के टेक लैब में मौजूद थे। उनके साथ काम करने वाले बाकी एम्प्लॉयज जा चुके थे, पर वो दोनों हमेशा की तरह लेट तक रुके हुए थे। आशिका के होठों पर एक छोटी सी मुस्कुराहट थी और उसने धीरे से अपनी उंगली स्क्रीन पर टैप की। इसी के साथ रेहान खुशी से जोर से चिल्लाया, फाइनली हमने कर दिया और अब हम यहां से जा सकते हैं, तुम ग्रेट हो ऐश, रेहान खुश होकर बोला और जल्दी से खड़े होकर आशिका को गले लगा लिया था। एक छोटे से हक के बाद आशिका उससे अलग हुई और कंधे उचकाकर कहा, अब ये लोग हमें जाने से रोक नहीं सकते हैं। बिल्कुल सही कहा, इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि तुमने बचा हुआ काम इतनी जल्दी खत्म कर दिया। अब तक तो इन्हें प्लान बनाने का भी मौका नहीं मिला होगा कि तुम्हें रोकने के लिए क्या करना है, रेहान ने खुशी से चहकते हुए कहा। आशिका ने उसकी बात पर सिर हिलाया। उसने टाइम देखा, वो जानती थी कि इस वक्त तक विराज भी सोने नहीं जाता है। आशिका अब और देरी नहीं करना चाहती थी। आशिका ने रेहान की तरफ देखा और कहा, एक काम करो, कोर्ट के सिक्योरिटी टाइट करो ताकि कोई भी इन्हें एक्सेस न कर सके। ये होने के बाद प्रोसेसिंग डेटा और हिस्ट्री हटा देना। इस काम को करने में हमने जितने भी ऐप्स क्रिएट किए हैं उन्हें भी परमानेंटली डिस्ट्रॉय कर देना। और तुम कहाँ जा रही हो, रेहान ने हल्का हैरानी जताते हुए पूछा, क्योंकि अक्सर ये काम आशिका खुद अपने हाथों से करती थी। कैप्टन विराज से बात करने, आशिका ने जवाब दिया। रेहान ने उसकी बात पर हामी भरी और तुरंत उसके बताए हुए काम में लग गया था। तो वहीं आशिका इस वक्त सीधे कैप्टन विराज के ऑफिस में जा रही थी। विराज उसे इस तरफ आते हुए देख रहा था, उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी। आशिका ने दरवाजा नॉक किया, कैप्टन विराज ने उसे अंदर आने का एक्सेस दे दिया था। अगले कुछ पलों में आशिका विराज के सामने खड़ी थी। एवरीथिंग इज डन कैप्टन, आशिका ने रिपोर्ट देते हुए कहा। ब्रिलियंट डैश, विराज ने भी उसकी उम्मीद के मुताबिक उसे अप्रिशिएट किया। आशिका ने विराज के चेहरे की तरफ देखा और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बिना पल के झपकाए कहा, मेरा काम हो गया है, सुबह आप मेरे जाने का इंतजाम कर दीजिएगा, मैं और रेहान वापस एले के लिए ही निकल रहे हैं। और क्या मैंने तुम्हें परमिशन दी, विराज ने भौहें उठाकर कहा, और शायद आपने भी मेरी बातों पर गौर नहीं किया। मैंने आपसे परमिशन नहीं मांगी है, बल्कि बता रही हूँ कि कल हम निकल रहे हैं, आशिका ने जवाब दिया। काम अभी खत्म नहीं हुआ है आश, विराज बोला, मेरा काम इतना ही है, बाकी एजेंसी के छोटे मोटे कामों के लिए बाकी इंजीनियर और प्रोफेशनलिस्ट पहले से मौजूद है, आशिका ने सिर हिलाकर कहा। पहले जब भी विराज उसे किसी तरह का कोई काम बोलता था तो आशिका बिना किसी बहस के वहां रुक जाती थी और वो काम खत्म करके ही वहां से वापस जाती थी। आज पहली बार आशिका ने सीधे सीधे उनके काम करने से मना कर दिया था। तुम जानती हो कि जो तुम कर सकती हो वो कोई नहीं कर सकता, तुम्हें थोड़ा और रुकना होगा, शायद 1 महीने का काम है, विराज ने आशिका की बात को अनसुना कर कहा। 1 महीना, आशिका ने तंज भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, कुछ कम वक्त नहीं बता दिया आपने? हाँ,
मैंने अपनी तरफ से थोड़ा कम टाइम कैलकुलेट किया है क्योंकि तुम जल्दी करती हो सकता है 2-3 महीने भी लग जाएं। तुम इसके बिना यहाँ से जा नहीं सकती हो ऐश, एज यूजुअल तुम्हारे पास मना करने का ऑप्शन नहीं है, इस बार विराज ने सख्त आवाज में कहा। आशिका पहले से ही तैयारी करके आई थी और उसे पूरी उम्मीद थी कि इस बार एजेंसी उसे रोकने के लिए कोई ना कोई घटिया चाल जरूर चलेगी। आशिका को हर हाल में अभिमान से मिलने वापस जाना था क्योंकि उसे इंडिया से आए हुए 20 दिन हो चुके थे। अपने रूम में जाओ ऐश और आराम करो, मुझे लगता है कि तुम्हारा काम काफी हेक्टिक होने वाला है तो तुम्हें प्रॉपर रेस्ट की जरूरत होगी, विराज ने अपनी तरफ से ऑर्डर दिए। आज आशिका उसके किसी भी ऑर्डर को नहीं मानने वाली थी। विराज के वहां से भेजने के बावजूद आशिका वहां खड़ी विराज को सख्त निगाहों से देख रही थी, जो इस बात का सबूत था कि विराज उसे अपने यहां रुकने पर मजबूर नहीं कर सकता है।
विराज ने अपना असली रूप दिखा ही दिया और आशिका को रोकने के लिए काम का बहाना लिया। देखते हैं आशिका कैसे किसी से डील करती है। चलिए अगले पार्ट पर मिलते हैं और पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा।